50,000 की जनसंख्या को एक मना करते हैं। रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे से 7 बजे तक ऑडियो कैसे सुनाने का व्यवस्था की जाता है। तो उन्होंने सुझाव दिया है 50,000 के अंदर का इसको आप एज इट इज मानिए, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। उनकी मूल भावना यह है कि रोज कैसे सुनाने की, ऑडियो कैसे सुनाने की सामूहिक व्यवस्था है। एक और कोशिश करते हैं व्यक्तिगत रूप से कैसे सुनाने की, एक जो कोशिश करते हैं वीडियो कैसे केवल वो भी ठीक है। उन दोनों से अलग होता है तीसरा भाव है कि ऑडियो कैसे को सामूहिक रूप से सुनाने की व्यवस्था की। तो कल जो कार्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की है, आप में से जिनको भी संभव हो जो सामूहिक रूप से ऑडियो कैसे सुना सकते हैं 5,000, 5,000, 10,000 जो भी संख्या हो वो मैं अपनी लगती है, लेकिन उनको रेगुलर रखे कार्यक्रम चला सकें तो चाहे 10 लोग सुने सामूहिक सुने तो करके कार्यक्रम के बारे में सुझाव तो आप में से जिसको लगे वो उसको जरूर करें। अभी हम लोग संगठन की चर्चा कर रहे हैं, संगठन की चर्चा के बारे में दो तीन बातें हैं। एक तो मेरा सबसे निवेदन यह है कि जहां जहां संचालन समिति बनी है जिले स्तर की, वो लोग अपने तहसील स्तर की संचालन समिति बनाने की कोशिश करें। सबसे दो रास्ते हैं, एक रास्ता यह है कि आपके जिले में मान लीजिए व्याख्यान हो गए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान हो गए हैं तो संचालन समिति बनाने का, लेकिन अगर व्याख्यान नहीं भी हुए हैं तो भी आप ऐसा करें जैसा जयपुर के साथ में हुआ, उन्होंने क्या किया व्याख्यान कराए एक अलग समिति बनाई जिस पर एडवोक कमेटी की अध्यक्ष होगा और उसको आयोजन समिति का नाम दिया और उस समिति में तो उसने एक सामूहिकता को नीति विकसित की। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां व्याख्यान होना है उसके बाद अच्छी व्यवस्थित संचालन समिति बने बहुत अच्छा, लेकिन जहां व्याख्यान नहीं भी हुए वहां भी अगर ऐसी समय के लिए वो सदस्य समिति ही बन जाए, वो एडवोक कमेटी ही बन जाए, काम आगे शुरू हो सके। वो भले ही काम कैसे सुनाने का शुरू हो, वीडियो कैसे टीवी पर दिखाने का हो, पत्र बांटने का हो, घर जाकर स्वदेशी में संपर्क करने का हो, दुकानदारों से संपर्क करने का हो, कोई भी काम हो, लेकिन अगर वो हम चाहें तो एक एडवोक कमेटी बनाकर भी शुरू करा सकते हैं। अपने नजदीक के जिले में या नजदीक की तहसील दोनों कोशिश कर सकते हैं। भारत में बहुत से इलाके जहां पर आंदोलन का मान लीजिए कोई काम नहीं हो तो वहां हम कोशिश करेंगे, और हमारा कोई जिला है वहां पर तो काम है लेकिन पड़ोसी तहसील है वहां कोई काम नहीं हुआ तो वहां भी ये कोशिश करेंगे एक एडवोक कमेटी तो बन दी जाए, तदर समिति बन जाए और वो इस आंदोलन के बचाव काम को ही आपने मान लीजिए वो शुरू में यही संकल्प कर ले कि हमको इस गांव में 10 लोगों को कैसे सुनाने, दिल्ली में 10 लोगों को कैसे सुनाने का एक कार्यक्रम हो सकता, या वो तय करें 500 घरों में जाकर ये स्वदेशी विदेशी पत्र पार्टी में कौन ये काम करना, मानी कोई भी छोटे से छोटा काम शुरू किया जाए तो अगर व्यक्तिगत प्रयास से कर रहे हैं कोई लोग तो वो कहीं ना मैंने ऐसा देखा है कि मैं गया और जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें तो आपकी कैसे 6 महीने पहले मिली थी और वो हमें अपने व्यक्तिगत प्रयास से इतने लोगों को सुनवाई है, तो उसी काम में दूसरे व्यक्ति मैंने कहा मैंने भी कैसे सुनी थी, मैंने भी उसको कई लोगों को सुनाया। अब ये दोनों जो अलग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अगर ये दोनों मिलकर करते तो शायद इसके रिजल्ट और ज्यादा निकल सकते। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि किसी तहसील में किसी भी जिले में ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने वाले 1, 2, 3, 4 लोग मिल जाए तो क्या अच्छा हो उनका एक सामूहिक प्रयत्न हो और उनकी एक समिति वहां बन जाए, और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं साहब कदर समिति बनाने की क्या जरूरत है हम कोई संचालन समिति ही बना लेते हैं तो मेरा उसमें कोई आग्रह नहीं है, कोशिश हमारा मेरा उसे जितने कहने का है कि जैसे ही समिति बनती है तो जिम्मेदारी शुरू होती है, जब तक आप समिति नहीं बनाते तो थोड़ा ढेर जिम्मेदारी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही समिति तुरंत उसमें जिम्मेदारी आ जाती है और अकाउंटेबिलिटी उससे जुड़ जाती है और अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता तो फिर तकलीफ आती है। तो समिति बनाना है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हम लेंगे, ऐसा मानस मन में जब आ जाए तो किसी के भी मन में आ जाए तो निश्चित रूप से समिति करा देनी चाहिए। उसमें यह इंतजार नहीं करना है कि राज्य परिवहन में आएंगे उनका व्याख्यान होगा, व्याख्यान के बाद हम मीटिंग बनाएंगे, उसमें समिति बनने की कोई जरूरत नहीं। मेरा व्याख्यान हो रहा हो लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए लोग अगर तैयार है तो उनकी समिति उस समिति गठित की जा सकती है। तो ये जो नीतिगत बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, संगठन बनाते समय कुछ नीतिगत बातों का जो ध्यान रखना है उस संदर्भ में ये कह रहा हूँ। एक बात तो ये कि जहां जहां जिले में संचालन समितियां बनी हैं वो अपने अपने तहसीलों में संचालन समितियां बनाने की कोशिश करें, उन तहसीलों में पहले कोशिश करें जहां व्याख्यान हो चुके हैं, और जहां व्याख्यान नहीं हुए हैं उन तहसीलों में कोई सदस्य समिति बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर सदस्य समिति बनाने वाले लोग तैयार है मानसिक रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए तो उनकी औपचारिक संचालन समिति भी बनाई जा सकती है और उसकी घोषणा की जा सकती है। उसमें इस बात का इंतजार है कि मैं आपका सभी को समिति बनेगी और एक जरूर बात कहना चाहता हूँ समिति बनाने के संदर्भ में और जो जयपुर वाले ध्यान में रखकर मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 10 साल का अनुभव है कि जैसे ही मैं कहीं जाता हूँ व्याख्यान करने के लिए व्याख्यान सुनते ही बहुत सारे लोगों में मुझे आती है और मैं जब उनसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपने नाम बता दीजिए जो लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं 50 कहीं 100 कहीं 200 लोग अपने नाम बता देते और उनको पहली मीटिंग वहां तो सब आती जाते। लेकिन बाद में क्या होता है कि मेरे वहां से खिसकते ही वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गले के सिर से सीधे, फिर बड़ी गिरने चले 2-3 सिर दिखाई देते हैं तो वो बेचारे क्या सोचकर जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर में दो सभा बड़ी सभा से कहना अब हमने अनाउंस किया मेरी आदत है मैं हर जगह करता हूं कि जिनको मैं आदत की बचाव मामलों में से जुड़ा आपको नाम बता देते हैं तो 450-420 लोगों में नाम दे दीजिए, 10,000 की भीड़ में से 400-450 लोगों में नाम दे दीजिए तो कोई वो अच्छा रेशियो नहीं है फिर भी दीजिए। और पहली डिग्री मैंने बुलाई हूँ सर तो आपको मैं कहता हूँ 450 में से कुछ 380 लोग आई उस मीटिंग में और उसमें मैं कहा कि हम संचालन समिति बना दे रहे हैं तो सबने खुशी खुशी से बोला जिम्मेदारी लिया और उसके बाद मैंने जिम्मेदारी छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला। फिर मैंने महीने पर सारा फोन किया क्या हाल चाल है समिति को, उन्होंने कहा कि वो सब गायब हो गया सब गायब हो गया और मीटिंग बुला रहे कोई आता ही नहीं है उसमें, वो 4-5 लोग आते हैं जिन्होंने मेरे व्याख्यान के आयोजन के लिए एक हेडलॉक है वही लोग 4-5 गिने चुने हैं या 10 हैं वो आते हैं बाकी तो सब अभी नहीं आते हैं। तो उसमें से मैंने एक सबक सीखा और वो सबक मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए वहां पर जितने भी लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं कभी भी ये भरोसा मत करिए कि ये सब कार्य करता है। ये आपको कुछ बड़ा भी बात होता है इसमें आपको कुछ खराब भी लगे तो उसको मान लीजिए कि ये गर्मा सच है कि मेरे वहां रहते हुए जितने लोग वहां घूम रहे हैं बिल्कुल ना मान लीजिए कि वो सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता 3 तरह के होते हैं, उनको हम अपनी भाषा में कहते हैं, एक तो ऐसे होते हैं कि जो राजीव भाई को चेहरा दिखाने आते हैं, राजीव भाई हम पहुंच सकते हैं और राजीव भाई आते आगे पीछे चालू हो जाते हैं वो तो अच्छी बात है कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे पता नहीं क्या कर और कुछ ऐसा होते हैं जो आगे अधूरे से होते हैं वो आएंगे तो थोड़े चार्ज हो जाएंगे फिर जाने के बाद 3 महीने वो चार्ज रहेंगे 2 महीने रहेंगे 3 महीने रहेंगे फिर उसके बाद थोड़े ठंडे हो जाएंगे। 3 ऐसे कार्यकर्ता जिनको मैं सच्चा कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं गया नहीं गया वो अपनी धुमे लगे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भले ही वो शाम को 1 घंटे लेकिन कुछ कर ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे और कार्यकर्ता बनी होती है कार्यकर्ता कम होते हैं सहयोगी उससे ज्यादा होते हैं और समर्थक सबसे ज्यादा होते हैं। कहने की मैंने बताई वो सब हमारे समर्थक ऐसा मानिए, दूसरी कहने की जो मैंने बताई वो हमारे सहयोगी है ऐसा मानिए और तीसरी और आखिरी बताई वो कार्यकर्ता है वैसा मानिए। तो जब भी आपको एक काम मिले अपने हाथ में कार्यकर्ताओं की संख्या और शक्ति को ध्यान में रखें और सहयोगियों की शक्ति और क्षमता को ध्यान रखकर आप काम हाथ में ना उठाए नहीं तो आपको बड़ा धोखा हो सकता है फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 ही कार्यकर्ता है तो 2 कार्यकर्ता की शक्ति अपनी क्षमता अपना उनका जो विश्वास है उसको ध्यान में रखना उपाय दस है तो और भी छत्तीस पंद्रह का ध्यान रखना काम आपको को ध्यान रखना। जब भी आपको काम करेंगे ये आपका ध्यान काम लीजिए। आजादी बचाओ आंदोलन का कोई भी काम आपके गांव में जिले में नगर में तहसील में जहां भी करना चाहते हैं तो जो कार्यकर्ता है उनकी ताकत के आधार पर करिए। सहयोगियों का उसमें सहयोग कीजिए। समर्थकों की संख्या बढ़ानी हो तो समर्थकों की संख्या बढ़ाइए लेकिन काम हाथ में अपनी शक्ति बढ़ी उससे आपको कभी भी निराशा नहीं होगी क्योंकि आपको उसके परिणाम का अंदाजा पहले ही होगा और वो परिणाम का अंदाजा आपको पहले होगा तो आप दोबारा जो है विश्लेषण नहीं करने पड़ेंगे हुआ है तो वो असर होता है। पिछले दो सौ ढाई सौ साल की गुलामी में काफी कुछ किया उसने आदमी का आत्मविश्वास ज्यादा उसको उसको भरोसा नहीं कर सकता तो चूंकि आत्मविश्वास भूल गया है लोगों का उस आत्मविश्वास की वजह से ये संकट हमें आश्रय झेलने पड़ते हैं और समाज का काम तो सेंटलेस जॉब में तो इसी तरह की परिस्थितियां हमेशा रहती है। आप जो कि आज की स्थिति नहीं गांधी जी के जमाने में ऐसे गांधी जी कहीं पहुंचे तो चेहरा दिखाने वाले एक लाभ भी होते और गांधी जी वहां से चले आए तो काम करने वाले कोई तुरंत नहीं पा सकते और गांधी जी ने जब ये नमस्कार कार्यक्रम आदमी लिया था इतना बड़ा आंदोलन मान सके एक पत्रकार ने पूछा क्योंकि गांधी जी नमस्कार त्याग के लिए निकले सेवा को साबरमती आश्रम से और आश्रम से निकलते समय 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे और गांधी जी का संकल्प ये था कि आश्रम तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक नाम का कानून नहीं छोड़वा दूंगा। संकल्प बहुत बड़ा कार्यकर्ता से द्वारा चल रहे तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि 72 कार्यकर्ताओं के तत्व आपने इतना बड़ा संकल्प ले लिया तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ता मेरे सच्चे कार्यकर्ता है इसलिए इनको साथ लेकर निकल रहा हूं और इनमें क्षमता है कि ये सहयोगी और समर्थकों की संख्या 1 करोड़ से ये क्षमता इन 72 में है इसलिए इनको साथ लेकर निकल रहा हूं और आप गांधी में संकल्प व्यक्त कराना तब आपको मैं दिखाऊंगा कि और वही पत्रकार को पहुंचे और सच में गांधी के समुद्र के किनारे जब गांधी जी पहुंचे हैं तो करोड़ों लोग थे तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ताओं ने सहयोगियों को जुटा दिया तो हमारे सच्ची शक्ति उनमें रखती है तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान बहुत आसान है। आप कुछ किसी के चेहरे को देखा चेहरे को किसी के देखा लेकिन उससे चार ढाल से पता चल जाएगा उसके हाव-भाव से पता चल जाएगा बातने के तरीके से पता चल जाएगा और कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने अनुभव से। एक तो आगे जो मैं सब जगह कॉमन होगी वो आपको बता देता हूं जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा ये कहने की कोशिश करे कि मैं बहुत कार्यकारी हूं ये करूंगा समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा लोग और जो आपसे ये कहे कि मैं 24 घंटे लगाने को तैयार हूं सब छोड़ कर ये करेंगे वो कार्यकर्ता नहीं है वो बीमार है मानसिक रूप से क्योंकि सब छोड़कर जो इस काम में लगने की बात कर रहा है इसका मतलब वो कहीं कुछ नहीं कर रहा ज्ञापन अगर वो कहीं कुछ कर रहा होगा तो ये कभी नौकरी नहीं करते तो आप उसको जरा ध्यान रखिए ऐसी कुछ चीजों से आप जजमेंट कर लीजिए और फिर अगर आपको और बड़ा गहराई से पहचाना हो तो छोटी सी जिम्मेदारी लेकर देख लीजिए जो मैं सब जितनी इस काम में लगा सकता हूं या ऐसा कर दूंगा 24 घंटे में गांधी कर दूंगा 48 घंटे में मेरे पास तो काम और उनको सबको पता आएगा छोटा छोटा एक काम है और एक काम भी आपके महीने पर चेहरा नहीं वैसे कहते हैं डायनामाइट को तो काम लगा और एक छोटा सा काम दे दिया तो फिर चेहरा नहीं कर देगा मैंने कहा कि डायनामाइट को लगाने साल के बाद आपको ये स्वदेशी देश के पत्र मारना उससे वो नहीं होगा तो ये इस तरह की बोगस लोग काफी आएंगे आपके पास और अभी जैसे जैसे आपका प्रचार बढ़ेगा तो और ज्यादा आपके पास आएंगे तो उनमें से सच्चे लोगों को छांटने की पहचान कैसे करें जो 10 वर्षों में उससे मैं आपको बताता हूं कि ऐसे आप लोग पहचाने और आपको एक भी कमी है तो परेशान ना हो आप अकेले लगे सहयोगी और समर्थक को आप मिलने का दोनों ने बताया तो हमेशा ही कहेंगे एक भी आपको मिलता है या दो भी मिलता है सच्चा कार्यकर्ता तो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तो ज्यादा कल्पना करता हूं मेरी तो एक छोटी सी कल्पना है कि हिंदुस्तान में 576,000 गांव है और हर 5 गांव के बीच में एक सच्चा कार्यकर्ता होना चाहिए एक बड़ा कार्यकर्ता होना चाहिए, सच्चे वो एक बड़ा कार्यकर्ता हिंदुस्तान में 10 करोड़ समर्थकों को खड़ा कर देंगे और वही एक बड़ा कार्यकर्ता कम से कम 5 करोड़ सहयोगी जुटा देंगे, तो एक लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा है सभी क्षेत्र में। तो ऐसी कोशिश हम जब करेंगे कार्यकर्ताओं को जुटाने की तो उसमें जो बात तो मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं आएगी। पहली बात मैंने फिर कही कि सच्चे कार्यकर्ताओं को पहचानिए, वो कम होंगे उतना उनकी ताकत निराशा नहीं होगी। दूसरा, सहयोगी और समर्थकों को बिल्कुल साफ दिमाग रखिए, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा समर्थक है, ये मेरा कार्यकर्ता। ये तीन कैटेगरी हमने कि ये हमारे समर्थक हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं।
आपको ये वीडियो कैसे अगर सुनने में अच्छी लगती है तो आप यहाँ संपर्क करें।
तो उस ऑडियो कैसेट चलाने की कैसेट खत्म हो गई और ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो संपर्क का पता उस इलाके का नाम रोशन बढ़ी है। कई जगह ऐसा हुआ है और ये कैसेट चली है जो लोगों को अच्छी लगी है तो लोगों को मानते हैं कि हम इससे संपर्क और अगर ये किया जा सके कि कहीं कहीं हो सकता कि आपने जो कैसेट चलाई है उसमें कैसेट के अंत में एक दो लाइन अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवा के लगा कि आपको इससे ज्यादा और जानकारी करनी हो तो ये फोन नंबर है ये एड्रेस है तो वो भी एक तरीका है। वीडियो करना बहुत आसान है ऑडियो में भी बहुत आसान है। आप एक मिनट में अनाउंस कर दीजिए कैसेट के अंत में तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ लोग संपर्क के माध्यम से मिल भी रहे। और एक तरीका और है कि हमने जो पत्रक बनाए हैं स्वदेशी विदेशी उनमें कभी भी बिना नाम पते का पत्रक निर्माण कम से कम एक संपर्क का पता उस पत्रक पर जरूर है। स्वदेशी सामान क्या विदेशी सामान क्या आपने पत्रक छपाया मान लीजिए निर्मला की छपा तो विजयनगर का कोई पत्रक पर नीचे रहना नहीं चाहिए ताकि पत्रक पढ़कर किसी को प्रेरणा हो तो वो आपसे संपर्क कर सके और आप फिर तय कर सके कि इसको हमें समर्थन कराना है कि सहयोगी बनाना है किसी का करना है। तो पत्रक हमें कोई ना कोई संपर्क पत्र के माध्यम से ही जारी करें कैसेट को सुनना वो भी एक संपर्क पत्र के माध्यम से ही उसको सुनवाइए। वीडियो कैसेट दिखानी हो उस पर भी एक संपर्क सहयोग का पता जरूर लगाइए ताकि देखने वाले को सुनने वाले को पढ़ने वाले को पता चल सके और आपसे संपर्क कर सके। कार्यक्रम आपके काम में थोड़ा सातत्य रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। सातत्य अलग था तो कार्यक्रम तो सातत्य बनाए तो सातत्य से बनाए रखने का कि आप सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में कोई एक दिन तय करें कि इस दिन हम सब बैठे मीटिंग हो आपको मीटिंग उद्देश्य वाली भी होती है निरुद्देश्य भी हो सकती है। हम लोग उसको एक शब्द देते हैं आप मिलन बिना किसी उद्देश्य के भी मिल सकते जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग उद्देश्य लेकर ही मीटिंग में बैठे ठीक है कोई उद्देश्य नहीं है तो भी महीने में एक बार हम बैठेंगे कुछ अच्छा करेंगे कुछ दबे मारेंगे एक दूसरे का सब कुछ पूछेंगे हालत पूछेंगे एक दूसरे की राजा कुछ पूछेंगे तकलीफ है क्या आपको आपको लेकिन आपको रहें आपको नहीं तो आपको कुछ ऐसे ही करेंगे ये जरूर रहेगी महीने में कम से कम एक दिन तो रहेगी
बहुत मदद।
अपनी बात सुनाइए, उनको समझने की कोशिश करिए। सभी भी इस बात का आग्रह पहली बात मान रखिए, तो आपकी सब बात पहली बात नहीं मान ये मानकर जाइए कि हमारी दस में से एक बात मान लीजिए या वो एक बात मानेंगे दस में से दो पेपर दो भी मानेंगे, तीन भी मानेंगे, पचास भी मानेंगे, फिर सबकी सामने मानेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते हैं और ये मानकर कि मैं आज भी उसको पूरा स्वदेशी बना के चलाऊंगा, ये तो नहीं होगा। आप ऐसा मान जाइए कि आज मैं उसको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये पैसे नहीं भी आएंगे, वो नहीं भी आएंगे, ये भी कल्पना करके मान जाइए वो पैसे को छोड़ ही देगा। बस इतनी कल्पना करके जाइए कि आज मैं सिर्फ उसको संभाले जा रहा हूं, हो सकता है दूसरे वक्त से बात करें तो वो पैसे को छोड़े या कॉलगेट छोड़ या बक्सर कॉलगेट कर या कुछ भी छोड़, तो दूसरी बात आने इसकी बात छोटी बात हो सकती है। सबके पीछे के कहने के ये मेरा ये चीज कहना है, थोड़ा धैर्य रखिए, अजीब का आप लड़ रहे क्योंकि अजीब का बहुत चीजें गड़बड़ हो जाए, तो थोड़ा सा धीरे चलेगा तो उसमें से चीजें सुधरती चली जाती, सुधरती चली कहा जाके हिन्दुस्तान धीरे द्वारा देखिए फ्रांस में अगर होगा तो अपनी बात धीरे चुपना होगा, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों का मानस जो है बिल्कुल अधीनता आया हुआ है, वो कहते हैं कि आज सवेरे कुछ तरह किया नाम हो ही जाना चाहिए, तो हो ही जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का मानस नहीं है, तो एक खास बात आप ध्यान रखिए कि भारतीय लोगों का जैसा मानस है उस मानस को ध्यान में रखकर अगर आप काम करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे। और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता हूं कि हमारा एक भी कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निराश होगा तो उसका आंदोलन निराश होगा,
और दूसरे में जाकर वो देखता है तो क्या देखता है कि
پتھر کے بغل کے راستے وہ بنا لیا کچھ لوگوں نے اور ادھر سے نکل گئے. مگر پتھر اتارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, اپنا ایک نیا راستہ وہ پتھر کے بغل سے جا رہا اس کو بنا رہے ہیں. یہ ہے بھارتی مانس, اور اس کو میں آج کی پریبھاشا میں کہوں کہ ہم ہندوستان میں یہ کلپنا کریں گے تو یہ کبھی شاید ہزار سال میں ممکن نہیں ہوگی کہ میں جب آتا کہتا ہوں نا چار ہزار ودیشی کمپنیوں کے مان لیجیے ہندوستان میں چار ہزار کارخانے ہوں تو ان کا جا کے بم گرا دیا جا رہا ہے ہندوستانی تبدیل کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ چار ہزار کارخانے بھارت کا چلے ہوئے ہیں, ہم کو اپنے چار ہزار نئے کارخانے چلا کر ان کا مان نہیں چاہیے, یہ ہم کیا بن رہے ہیں. یہ بھارت کی مانس جو بہشکار ہے نا وہ بھارتیہ مانسکتا سے نکلا ہوا ہتھیار ہے, اور ان کارخانوں کو بم سے اٹھا دینا یہ بھارتیہ مانسکتا کے باہر ہی ہے. تو بھارتیہ مانسکتا کے باہر ہی چیز اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اتنی ہی کر پائیں گے جتنی آپ کی شکتی ہے, دوسروں کی مدد آپ کو نہیں ملے گی. اور بھارتیہ مانسکتا کے ساتھ مل کر اگر آپ کو کام کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسروں کی مدد آپ کو ملتی رہے گی. تو یہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر بہشکار کی بات شروع کی ہے. بہت لوگ کہیں گے کہ آپ نے کوئی دوسرا بھی کام کیا ہوگا, ہم نے روٹی کر کے دیکھا شروع کے دنوں میں ادھکار کے کارن کام ہم کے لیے کوشش کر کے دے دی, چلو یہ درسی کا بران بن رہا وہ بن رہا یہ بن رہا وہ بن رہا, اور اس کے لیے باقاعدہ منوان کا سنگھن بھی بنایا, ایک بلدانی جس دستہ بھی بنایا, ہم نے جو مرنے میں وشواس رکھتے ہیں مرنے سے ایک گھنٹے نہیں کرتے وہ سب ہم نے کیا, لیکن انت میں نتیجہ ہم نے یہ دیکھا
اپنی نظروں میں تھے, دوسرا سماج کے لوگوں نے ان کو عمدہ کرنا شروع کر دیا,
जिसमें सुनने में हमें क्या रिपोर्ट हो करते हैं मार देते हैं हिन्दुस्तान में भारतीय जीवन में सबसे बड़ा वो है सामिक ये कानूनी अवकाश है या नहीं है उसी में भाषा नहीं बोलता अगर कहीं मानवीय हो गए तो हिन्दुस्तान में बढ़ता हमको अपने विरुद्ध विचार वाले को भी मार पीटते हैं तो उसका ऐसा नेगेटिव पूरे देश में वो प्रसार हो रहा था आपके साथ कुछ बड़ी गलत काम किया भले तो आपके जो भी विचार रहा था उसने आपको बड़ी भी ये नहीं चल रहा है ये कभी बर्दाश्त ही नहीं है तो जो चीज अगर बर्दाश्त नहीं है वो आप कभी बोल सकते तो इन दो तीन बातों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काम आपके साथ बहुत अच्छे करना चाहिए कार्यक्रम साहब को मैंने कुछ चीजें ध्यान रखे और कार्यक्रम साहब को संगठन में शामिल करने से अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप संचालन समिति में लें किसको न लें तो निश्चित रूप से एक तो जो कार्यकर्ता है उन्हीं की संचालन समिति सहयोगी और समर्थकों को आप बुलाइए जरूरत पड़ने पर बुलाइए लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके संचालन समिति में शामिल हो तो आपके सहयोगी हैं समर्थक हैं पर जरूरत होगी आपके पास आएंगे संचालन समिति में उम्मीद रखिए जो कार्यकर्ता है वो सबके कार्यकर्ता वो दो हैं तीन हैं पांच हैं दस हैं पंद्रह हैं उससे कोई व्यक्ति एक भी है तो भी हमारे संचालन समिति है जो संचालन समिति में कार्यकर्ता शामिल है उनको कुछ न कुछ समय इस काम में लगाना उस दृष्टि से थोड़ा एक नियम बनाना कि जो भी कार्यकर्ता है उसको अपनी प्रेरणा से सप्ताह में एक घंटा प्रतिदिन दो घंटा या महीने में चार घंटे या महीने में एक दिन इस काम के लिए लगाना ईमानदारी जैसे वो जीवन में बहुत सारे काम करता है अपनी पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ वैसे ही इस काम के लिए भी वो जीवन का कुछ ना कुछ समय लगा ईमानदारी और तो समय दान हर कार्यकर्ता के लिए जरूरी है अब समय काल पर भाषण देने जाता ठीक है समय काल पर पत्र बांधने जाता जरूरी समय काल पर कैसे बांध जाता जरूरी समय काल पर किसी को वीडियो कैसे बांध दिखाने जाता जरूरी समय काल पर पुस्तकें देने जाता जरूरी कुछ नहीं करता समय काल पर हस्ताक्षर कराने जाता जरूरी और कुछ नहीं करता तो समय निकाल कर पांच मिनट दूसरों से चर्चा करने की आदत होगी वो सब हमारे कार्यकर्ता है तो एक तो समय दान सबके लिए जरूरी है और दूसरा कि बन सके होना इसमें बहुत जुड़ाकर रखते हैं बन सके होना वो स्वदेशी धर्म रहा उसकी जितनी शक्ति और क्षमता है उसके अनुसार वो स्वदेशी धर्म वो 100% स्वदेशी के स्त्री में नहीं होने वाला मेरा तो बहुत अच्छा सौ प्रतिशत मैं भी मैं दूसरों को कह रहा हूं मैं भी कभी कभी हवाई जहाज में बैठता हूं दूसरों स्वदेशी को कोई नहीं मिल रहा तो मैं मानव ये नहीं सोच सकता कि मैं नहीं बैठूंगा वायु को नहीं जाना पड़ेगा कई बार ऐसे घर पर आने के समय की मीटिंग मुंबई में करनी है और शाम की दिल्ली में करनी है इसके अलावा दूसरा भी करना फ्लाइट वगैरह में जाना नहीं चाहता या तो ये सर एक ही करनी है और नहीं बुक करनी पड़ेगा अगर मेरे साथ उसका ये ऐसा आपकी मीटिंग है तो शाम को मुंबई में और देर रात में ऐसी कई मीटिंग है तो वो तो करना है और करना भी पड़ेगा तो इसलिए मैं किसी को आग्रह नहीं करता कि आप 100% स्वदेशी हो जाए आपकी किसी को उनसे कहिए कि यथाशक्ति जितना आप स्वदेशी बन सकते हैं उतने हो जाए 5% हो सकते हैं 10% हो सकते हैं 15% हो सकते हैं 20% हो सकते हैं मान लीजिए इतने ही बोला कि जीवन जरूरी वस्तु है जो रोज इस्तेमाल होती है जिनको हम मास कंजम्पशन आइटम्स कहते हैं साबुन है सरमंजन है तेल है कलरा की शाह है जूते चप्पल है पहनने के कपड़े हैं खाने पीने के कुछ सामान है जो रोज हम काम कर रहे हैं उतने में ही हम प्रदूषित हो जाए तो थोड़ी देर के लिए टिकट बंद हो जाती है टीवी है रेफ्रिजरेटर है कि कार है कि सेल फोन है हमारे पास बनाने के बाद इसको थोड़ा बाधा नहीं कर चीजें थोड़े समय के लिए और उसमें लक्ष्य ऐसा किए कि जो मास प्रदर्शन आइटम है उन मास प्रदर्शन आइटम के क्षेत्र में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उन चीजों के क्षेत्र में रोज स्वदेशी है और बाकी जैसी चीजें हैं जो आप कभी कभी खरीदते हैं जैसे टेलीविजन तो रोज नहीं खरीदते आप कार भी रोज नहीं खरीदते सेल फोन भी रोज नहीं खरीदते रेफ्रिजरेटर भी रोज नहीं खरीदते ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप रोज नहीं खरीदते उनसे अगर थोड़ा आग्रह ना करें उसमें आप गारंटी करें कि बस में होगा आप स्वदेशी के लिए, क्योंकि टेलीविजन भी स्वदेशी है, कार भी स्वदेशी है, रेफ्रिजरेटर भी स्वदेशी है, और भी बहुत सारी चीजें स्वदेशी है, तो कंज्यूमर होते हैं जो रोज ही घंटे जाते हैं, कभी साल में एक बार या दो साल में एक बार या पांच साल में एक बार जाते हैं, तो उसमें भी याद कर रखी है कि बस में होगा स्वदेशी या देशी का इस्तेमाल। हम लोगों ने एक वर्गीकरण किया है और वो वर्गीकरण आप समझा रहे हैं, हमने तो स्वदेशी वस्तु, दूसरी देशी वस्तु और तीसरी विदेशी वस्तु। स्वदेशी क्या है? जो हमारे काम में बनता है, हमारे संसाधनों से बनता है, हमारी से बनता है, हमारी तरक्की से बनता है, वो हमारे लिए स्वदेशी और हमारे लिए बनता है। देशी क्या है? देशी को बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियों में बनता है या जॉइंट वेंचर में, जैसे मान लीजिए भारतीय सूत्र या हमारी देश या टाटा साहब बाजार या हीरो होंडा या बायोमेट्रिक होंडा या बड़ी निर्माण कंपनी टाटा कंपनी या बिरला कंपनी, ये सब हमारे लिए देशी। स्वदेशी को जो गांव में कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम दर्जे के उद्योग है, हमारी कृषि पाराश्रम हमारे संसाधन और हमारी नदी का इस्तेमाल करके मुनाफा साधन है, वो हमारे लिए स्वदेशी है। पहला आग्रह स्वदेशी का नाम ले तो देशी का विदेशी का नहीं, लेकिन उसमें भी अगर इमरजेंसी है कहीं तो उसमें भी सोचिए इमरजेंसी की अगर स्थिति है, जहां लिए हम डॉक्टर कोई पेशेंट आपके पास आने वाला, मुझे मालूम है कि इंजेक्शन नहीं उनकी बना दिए और उसका नाम फाइजर, तो तुरंत उसको लगाइए वो मुझे देता है, उस समय घर मांगा दिए क्या उसको फाइजर का इंजेक्शन देकर देता है ताकि वो जिंदा रहेगा, फाइजर के काम बढ़ेगा उससे पास होगा, उसको जिंदा रखिए पहले ताकि वो आपकी लड़ाई में कभी आपका साथी बन सके, सहयोगी बन सके। तो ये इमरजेंसी कभी भी होगी, आपत्ति कभी है और आपत्ति का भी समय है, तो उस समय ये ज्यादा चर्चा मत करिए अपने दिमाग से, और हर बार तो कई संस्कृत सूत्र है आपत्ति का भी मर्यादा ना सीखिए, जब बहुत आपत्ति का समय होता है उस समय मर्यादा की बात करिए इसलिए तो मुश्किल हो जाए, तो आपत्ति का कोई समय है तो उसमें ज्यादा ही चक्कर मत चलाइए। सामान्य समय में चक्कर क्या चलाना है? ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी, ना मिले तो देशी, विदेशी कम से कम, ना मिले तो बस आपके काम में वर्गीकरण करिए, आप अपने लिए भी करिए और अपने सब कार्य काम करिए, तो उससे वो नहीं पड़ता एक बार अपना ध्यान रखिए, हमें दूसरों को प्रेरित करते हुए ये कराना है ना कि उस पर मन जमा कर अधिकार जमा कर, हमने जबरदस्ती किसी से करा भी लिया तो दिन में लॉस पार्टी से कोई चीज लंबे समय नहीं चलती, आदेश क्योंकि बहुत चीजें लंबे समय नहीं चलती, क्योंकि हिंदुस्तान समाज की कुछ विशेषता है, जैसे मैंने बताया हमारे समाज की एक विशेषता है कि उपाधि विशेषता है आसान आएगा, ये एक विशेषता, ऐसी एक दूसरी विशेषता है भारतीय समाज आदेश पसंद नहीं करता कभी नहीं, इसलिए हमारे देश में कभी सैनिक शासन नहीं होता, कभी आपको एक जिस दिन हिंदुस्तान ने सैनिक शासन करने की किसी ने कोशिश की जनता उसको ऐसा पटकी मारेगी कि वो उसको इतनी बड़ी मार देगी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी कोशिश की वहां जैसी आई है और उनके सारे लेकिन अपना नहीं देख उनका क्या तो भारतीय समाज को आदेश पसंद नहीं करते, निवेदन मान जाता है, आप विनम्रता के साथ निवेदन करिए उससे बड़ी बात मारेगा, तो निवेदन करिए उससे विनम्रता के साथ, विनम्रता पसंद करता भारतीय से, विनम्रता के साथ किया गया निवेदन हो सकता है वो आपको इतना सहयोग करे तो अपने घर की सारी चीजें दिला दे अगर आप उससे विनम्रता से ले और जहां तक आप उसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये भारतीय समाज हो आप किसी बात को स्वीकार नहीं करें, इसी बात को मैं कह रहा हूं मजाक नहीं तो बहुत गंभीरता से कह रहा हूं भारतीय समाज कैसे नहीं देता दान होगा, इसलिए दान जब आप मानते हैं तो उसमें विनम्रता होती है और जब टैक्स लेते हैं तो पूरी शुद्ध दादागिरी होती है और जो टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं उसको दादागिरी ही सिखाई जाती है, महाराजा उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, मेरा दर्जे में आईआरएस इंटरव्यू सर्विसेज में है, अभी ज्वाइंट कमिश्नर रही है एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स का, वो मुझे जब भी मिलता है उसको पूछता हूं हमारी ट्रेनिंग क्या होगी, उसने कहा एक बार में कहूं तो हमको दादागिरी से टैक्स कैसे वसूलना ये ट्रेनिंग कर, दादागिरी का काम विदेश किया करते थे, प्रॉपर्टी दिखाना, दादागिरी दिखाना, धमकाना, डराना, धमका के डरा के आपके असेट्स को कबूल करवाना वगैरह, ये हमारे समाज में चला होना रही है, इसीलिए ये सारे टैक्स के डिपार्टमेंट जेल में हमेशा नहीं करते, और इससे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में हर साल दान के रूप में खर्च होता है, वो लाखों करोड़ जितना टैक्स वाले कोई करना ही कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आगे जमा हो जाता है। इसके लिए वो बिल्कुल साफ साफ देखने वाली बात है कि हम जब दान तो आपकी बिना अनुदान देने की कोशिश करिए और बिना अनुदान के साथ बात करें, लेकिन बिना अनुदान इसका अर्थ ये नहीं है कि तत्वों को नजरअंदाज करें, उसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं। सारे तत्वों उनके सामने रखिए पूरी ईमानदारी से, फिर उन्होंने ये देखिए हमको इतना समझा रहा है कि राष्ट्र की ये जो परिस्थिति है इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है स्वदेशी, और आपको इससे ज्यादा कोई दूसरी बात समझ में आती तो आप समझा दीजिए या आप उस काम को करिए। तो वो अगर पास से ज्यादा दिमाग सीखा होगा स्वदेशी रूप से मानेगा और नहीं होगा तो भी ईमानदारी से वो मान ही लेगा। तो ऐसा हम हमेशा से अपने जीवन में कुछ धारण करेंगे दो तीन बातों को नीति के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सफलताएं ज्यादा मिलेगी, असफलताएं कम मिलेगी, कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़े गए और कार्यकर्ता को जोड़कर रखने के लिए भी बहुत जरूरी है मैडम। कार्यकर्ताओं के साथ भी अगर आप आदेशात्मक रवैये में व्यवहार करें, उसको आप ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम करना है या ये नहीं करना, तो वो थोड़े दिन रहेगा फिर उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, नौकर नहीं, वो अपनी प्रेरणा से आया है कुछ करने के लिए आया, और वो अपनी प्रेरणा से आया है कुछ करने के लिए आया तो ये मान लीजिए कि उसका स्वाभिमान आपको बरकरार बनाकर रखें, उसके स्वाभिमान को जरा भी ठेस लगेगी तो आप लाख अच्छी बात कहिए वो आपसे किनारा कर लेगा और नमस्ते करके चला जाएगा। तो हम कोशिश भर तक ये करें, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग आदर्श होते हैं, आदर्श तो कभी होता नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारे हर एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान उतना ही है जितना मेरा, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका स्वाभिमान बराबर का होता है, तो उसके स्वाभिमान को अगर आप बराबर पहचान कर रखेंगे और अपने स्वाभिमान को भी बराबर पहचान कर रखेंगे तो वो जो है बात बैठती रहेगी, आपकी और उनका संवाद बहुत गहरा होता जाएगा और उनका और आपका काम करने का जो तरीका है वो शायद बहुत सामने वाला होता जाएगा। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे संगठन बनाने में तो बहुत अच्छी होगी। और एक बात और ध्यान करिए कि कभी भी इस तरह की कोशिश मत करिए कि ये सब काम हम अगले करवा लेते हैं, अगर हम करवा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा इस देश में, क्योंकि हमें मालूम है हमारी शक्ति कितनी है, हमें यह भी मालूम है दूसरों की शक्ति है। तो कोशिश हम ये भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, उसमें मेरा कोई आदेश नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई दूसरा या हमारे गांव में कोई दूसरी संस्था भी है और वो भी कुछ इस तरह के काम में मदद कर सकती है, जरूर उनकी मदद करें। उस समय ये मत सोचिए कि उनका झंडा कौन सा है, हमारा झंडा कौन सा है, उनकी पार्टी कौन सी है, हमारी पार्टी, इसी चक्कर में हिन्दुस्तान बर्बाद है। हम कभी इतिहास में ये पढ़ते रहे हैं कि इस देश के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते, एक दूसरे से तो लड़ते थे। जोधपुर वाला जैसलमेर से लड़ लेगा, जैसलमेर वाला जोधपुर से लड़ लेगा, दोनों मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते। ये हमारे देश की बर्बादी की कहानियों में एक बड़ा वो है ना अध्याय, ये सब हमने पढ़ी है ना कि हिंदुस्तानी राजा महाराजा आपस में बहुत लड़े, एक दूसरे की मारा काटी भी की है और एक दूसरे की चुगलियां भी अंग्रेजों से की है। अंग्रेजों से मिलकर अगर लड़े होते तो शायद 1760 में अंग्रेज भाग गए होते देश से। और ऐसा होता रहा है कि एक राजा लड़ रहा है, दूसरा उसके बाजू में है, वो निसंकोच जो है शांत बैठा हो, उसको ये चिंता नहीं है कि कल को ये अंग्रेज हमको भी आके पीटे। अगर ये रहा होता तो बड़ा काम हो गया होता इस देश। तो वो गलती आप मत करिए, बहुत सारे संगठन है इस देश, बहुत सारी संस्थाएं भी है इस देश, शायद हजारों की संख्या में होंगे और उनमें लाखों कार्यकर्ता भी होंगे पूरे देश में। तो अगर कोई संगठन संस्था या कोई व्यक्ति जो आपको लगता है कि इस तरह के काम में मदद कर सकते हैं, जरूर मदद लीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को स्वदेशी के आधार पर अगर खड़ा करना है, फिर से पुनर्निर्माण करना इस देश का या इस देश की नई कहानी कहनी है, जैसा कि हम हमारे गीत में गाते हैं, तो वो नई कहानी आप अकेले नहीं कह पाएंगे, आप अकेले लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। तो हमारी क्षमता और शक्ति का अंदाजा अगर हमें हमेशा रहेगा तो उससे हमें दूसरे काम करने में काफी सुविधा मिलेगी। मजदूर संगठन है हमारे देश, उनको संपर्क में लीजिए, कर्मचारियों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, डॉक्टरों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन है उनको भी संपर्क में लीजिए, मैं तो यहां तक कहता हूं जातियों के संगठन है वहां भी जाइए, हमें अपनी बात कहने के लिए कहीं भी जाना,
हम ये नहीं कहेंगे कि ये जातियों के संगठन है, ये सामंतवादी मानसिकता वाले हैं। ठीक है, वो अपने लिए सामंतवादी मानसिकता के हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी बात कहने के लिए उनके बीच में नहीं जाएंगे जो जातियों के संगठन है। आपको हंसी आएगी, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, हंसीएगा बाद में, पहले उसमें सोचिए। मैं अगले महीने मुंबई में हिजड़ों की एक सभा करने जा रहा और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। अब हमारे कार्यकर्ताओं में मारापारी मची है कि राजीव भाई वहां कैसे जा सकते। मैं तो वैश्याओं के बीच में भी जा सकता हूं अपनी बात कहने, क्योंकि हमें अपनी बात कहनी है। कौन जाने उनमें से किसी को ये बात प्रेरित हो रहा है और वो अपने तरीके से कुछ करने लगी है। मुंबई में 5,500 हिजड़े हैं जो समय समय पर अपने काम के लिए घूमते ही रहते हैं और वो गीत भी गाते हैं, तो मैं तो उनको ये गीत सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जाएंगे तो हमारा गीत गाएंगे, उनको तो गीत गाना ही है। और जिस घर में जाएंगे उसमें वो अगर दो बातें ये भी कह देंगे कि भाई बहुत अच्छा है, आपके घर में बेटा बेटी पैदा हुई है, हमारी शुभकामना, अब आप स्वदेशी भी अपनाएंगे, इतनी भी वो बोलेंगे तो 5,000 मुंह से स्वदेशी तो निकलेगा और वो 5,000 लोग जो है अच्छा प्रचार भी कर सकते। हरेक में संभावना है इस देश में। आदि के आंदोलन की कहानी आप पढ़िए, कितनी वैश्याएं थी जो महात्मा गांधी को डोनेशन लाके देती, कितनी वैश्या जिनका जिक्र गांधी जी ने अपने उसमें किया, लेखों में किया, नाम लेकर लिखा, हिंद स्वराज के लेखों में गांधी जी ने लिखा है, यंग इंडिया के लेखों में लिखा है, उनका जो संपूर्ण कलेक्शन है वो मैंने 2-3 बार देखा है, पढ़ा है। तो एक और भी आशीर्वाद पता नहीं कितने लोगों के नाम लिखा है कि वो वैश्या वो ऐसा है, लेकिन वो तो आती है, मुझको तो सोना देके जाती है, वो तो आती है, चंदा भी देके जाती है और वो कहती है कि आजादी के आंदोलन में हमारा बड़ा भारी योगदान। और कई तो ऐसी वैश्याएं रही हैं जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किए, अंग्रेजी बड़े बड़े अधिकारियों को जिनको हैंडल करना क्रांतिकारियों के लिए मुश्किल था उनको मारा, हास्ते करता है। तो माने मेरा ऐसा कहना कि समाज का कोई भी आदमी अनुपयोगी नहीं है, समाज का कोई संगठन अनुपयोगी नहीं है, समाज की कोई संस्था अनुपयोगी नहीं है। छुआछूत मत करिए, ज्यादा छुआछूत करेंगे तो आप अकेले पड़ेंगे। और अगर हमें ये काम 20-25 साल में करना है जैसा कि मैंने कहा, तो ये 20-25 साल में तो ये तभी होगा जब आपकी बात और आपका काम बहुत सारे दूसरे संगठन भी करना शुरू हो, तब आप 20-25 साल में ये। और हमारा उद्देश्य क्या, अंग्रेजों का उद्देश्य था समाज को तोड़ा हुआ, तो बंटवारे किए, एक को दूसरे से लड़ाया, दूसरे को तीसरे से अलग किया, तीसरे को, तो उन्होंने बंटवारे किए हैं तो समाज को कई स्तरों पर तोड़ा है। दुर्भाग्य से पार्टियां हमारे देश की उसी रास्ते पर चल रही है कि समाज को अपने अपने तरीके से जोड़ रही है। तो हमारा काम तो पार्टियों से बिल्कुल उल्टा है, हम तो जोड़ना चाहते हैं। आजादी के पहले समाज को जोड़ने में आजादी आंदोलन का एक बड़ा भारी योगदान था, तो आजादी के बाद इस समाज को जोड़ने में आजादी बचाओ आंदोलन का एक बड़ा योगदान हो, ये हमारा आदर्श और ऐसी कल्पना हम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का इसमें योगदान मिले। मैं तो आपको एक ऐसी छोटी बात बताता हूं, कुछ लोग तो उसमें चिंता करते हैं। मुंबई की मेरी कई मीटिंगों में डॉन और माफिया कहलाने वाले मुद्दे, एक दिन तो ऐसा हो गया मैं एक मीटिंग में भाषण देके मंच से नीचे उतरा और सामने बैठे हुए कुछ लोग, मैं तो नहीं जानता कौन, जैसे ही मैं उतरा उसने कान में आके कहा कि मेरा नाम छोटा है। तो बगल वाले का तो सूट गया, ये छोटा राजेंद्र कहां से, और उसने ऐसे ही बहुत सहजता से आकर कहा कि राजीव भाई मेरा नाम छोटा राजेंद्र। तो मैंने सहजता से हाथ मिला लिया, हमारे बाजू वाले क्या कह रहे राजीव भाई आपका जल्दी चली, मैंने कहा क्यों भैया, बोलता वो सामने से आया है, उसका परिचय दे रहा, इसका मैंने वो सदाशयता में आया, वो मुझे मारने मिला और फिर वो बोल के गया। आज का व्याख्यान सुन के मैं आपको बोल के जाता हूँ कि मेरे घर में हंसी पर्ची नहीं आएगी, कूपा नहीं आएगी, तो उसने पर्ची को बंद कर दिया, अपना पिलाना बंद कर दिया, पिलाना बंद कर दिया। और ऐसे ही एक दूसरी घटना हुई, पप्पू कलाणी का नाम चाहता अपने सब में, मैं एक बार उल्लासनगर में सभा करने पहुंच गया, उसका भाई और उसका दोनों सभा में बैठे, तो जैसे ही वो अंदर घुसे तो हड़कंप जैसा मच गया, तो पता नहीं कहां से आ गए, तो मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा कि भाई क्यों ये अफरा तफरी है, पूरा कराजी भाई वो धीमे से बोला पप्पू कलाणी का भाई है, उसकी बात, तो मैंने कहा ठीक है भाई रही तुम्हें बैठे तुम्हें क्या कहते हैं, वो सुनने आया है, सुने तो कुछ अगर मिल जाएगा वो लेके अपने घर जाएंगे। और वो सभा के बाद उसकी बहन का मेरे पास पत्र आया, पप्पू कलाणी की बहन, और उसने कहा कि मेरे भाई को मैंने जेल में, वो जेल में है, तो जेल में मैंने पत्र लिखा और जेल में उसने पैसे छीने। तो हम लोग कभी अगर ऐसी बातें ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति में सुधरने की गुंजाइश है, हर व्यक्ति में राष्ट्र के लिए कुछ करने की गुंजाइश है, ये अलग बात है कि उसको मौका मिला तो उसने किया, नहीं मिला तो किसी दूसरे रास्ते पर चला गया। यही लोग जो आपको बड़े डॉन लगते हैं, माफिया लगते हैं या समाज के काले धंधे करने वाले होते हैं, अगर हमें क्षमता हो तो यही लोग राष्ट्र का काम करने वाले भी साबित हो सकते हैं। गांधी जी की इस बात से मैं हमेशा सहमत हूं। गांधी जी अक्सर कह रहे थे कि हृदय परिवर्तन होता ही है, आप चाहे माने या ना, और हृदय परिवर्तन मैंने मोदी को देखा। मैं तो अभी एक बहुत सही मैं करने आ रहा हूं, अपने लिए मैंने किया, लेकिन मैं आपका ही नहीं बया बात अब अभी एक सेंट्रल जेल है वहां गया बात और वहां मेरे मित्र हैं जो बिहारी हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं तो वहां में जेल में भाषण दे रहा हूं, भाड़ा भी लेना और इन बड़े शांति से सुना, किसी ने भी एक चू की आवाज नहीं की। भाषण करवाने के बाद उनमें से एक काम हुआ, उसने कहा कि आपकी बात सुनने से हमको समझ में आता कि हमसे बड़े बड़े जो मनोरंजन है वो कहीं और है। इसी लोगों को मारा एक भोजन है। उसने कहा, आपने नहीं कहा कि विदेशी कंपनी आ गई, विदेशी कंपनी आने से लाखों कारखाने बंद हो गए, करोड़ों मजदूर के लाभ हो गए, तो ये भी उन्होंने करोड़ों मजदूरों को मारा, वो कम से बड़ा फर्क। हमने तीसरी जगह बात किए थे और यहाँ तो एक फाइनेंस मिनिस्टर है साक्षर से, हिन्दुस्तान में करोड़ों भरकर माल हो गए, जितनी होगी उनकी छेद रही
ज्यादातर सदस्यता बनाना चाहते हैं, माननीय महाशयों से सबको मेंबर बनाना कर सकते और सदस्यता बनाना चाहते उसमें आपका कहना है कि ज्यादातर को सदस्य बनाएंगे पानी मुश्किल हो जाएगी, हमको ठीक से हैंडल करना नहीं कर पाएंगे, तो कुछ प्रयोग करके देखिए कर ज्यादा सदस्य बनने के बाद आपकी क्षमता बढ़ नहीं सकती और दूसरा भी हो सकता है जो है अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर करिए। कुछ ग्राम हैं जहाँ की संचालन समिति थोड़ी अपने आपको ज्यादा मजबूत समझती है तो उन जरूर के पास लेवल पर और मेंबर कैसे बना हरेक साथी को मेंबर आप पैसे आपकी मेंबरशिप फीस लेना फीस कहीं ना कहीं क्योंकि हमने आपको परंपरा दी है। अगर आप बता रहे सुरक्षित नाम दे
प्रकाश लाइट आ रही है।